सच्चा अमानत दार ताज मुझे को तू या रब बना। सच्चा अमानत दार ताज मुझे को तू या रब बना। तेरी पसंद की हो तिजारत गफलतों से तू बचा।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں. حسب معمول انشاءاللہ مفتی علی اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ کے سوالات ہوں گے, مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے احادیث میں بڑے فضائل بڑی برکات بیان کی گئی ہیں. ایک حدیث پاک جو القول البدی میں بیان کی گئی, فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ, رب تبارک و تعالی کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین نیت فرما لیں. برکت کے بہت سارے نسخے بیان کیے جاتے ہیں اور اس میں سے ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ درود پاک کی کثرت کی جائے. ہمارا سلسلہ بالخصوص مالی معاملات کو دیکھتا ہے, کاروباری تجارتی اور مالی لین دین کے جو معاملات ہوتے ہیں, بزنس ہے, ٹریڈ ہے, جابز کے میٹرز ہیں, کمپنیز کے میٹرز ہیں, چھوٹے بڑے کاروبار ہیں, ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں. اور یقیناً جو بھی وے آف انکم آپ اختیار کرتے ہیں اس میں ایک بڑی شدید خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ جی ہم جو کاروبار کر رہے ہیں, ہم جو ملازمت کر رہے ہیں یا ہمارا جو ذریعہ آمدنی ہے اس میں برکت ہو جائے. تو برکت کے نسخے بھی بیان کیے, برکت کا مفہوم بھی بیان کیا گیا. مفتی علی اصغر صاحب کے یوٹیوب چینل پر احکام تجارت کا ایک پاس سلسلہ رکھا ہوا ہے, بلکہ دو سلسلے ہیں, دو ایپیسوڈ ہیں کہ جس کے اندر برکت کے اسباب اور اس کے محرکات مفتی صاحب نے بیان فرمائے تھے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کی جائے, کہ درود پاک کی کثرت سے بھی انسان کو برکتیں ملتی ہیں. آپ بھی نیت فرما لیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ درود پاک پڑھیں گے. امیر اہل سنت نے جو اسلامی بھائیوں کے لیے, اسلامی بہنوں کے لیے نیک اعمال مرتب فرمائے ہیں, وہ اعمال کا کتاب تک ہے جس کے ذریعے سے آپ کو نیکیاں ملتی ہیں یا آپ نیکیوں کو پہ کاربند ہو سکتے ہیں, اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. اس میں سے ایک نیک عمل جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ نے آج کم از کم 313 بار درود پاک پڑھا یا نہیں پڑھا, تو آپ بھی نیت فرما لیں اور کوشش کریں کہ روزانہ 313 بار درود پاک کم از کم, زیادہ کریں گے تو جتنا ہو, کہتے ہیں کہ گڑ ڈالو یا شہد ڈالو تو مٹھاس زیادہ ہوگی, زیادہ پڑھیں, اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اور کنٹینیو پڑھیں, مسلسل پڑھیں, یعنی مسلسل سے میری مراد یہ ہے کہ عمل کم بھی ہو لیکن مسلسل ہو تو اس کی اپنی ایک اہمیت بھی ہوتی ہے, فضیلت بھی ہوتی ہے اور اس کی برکتیں بھی الگ ہوتی ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں انشاءاللہ حاضری دیں گے. سوال کی طرف بڑھتے ہیں, پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی طرف آتے ہیں. جی
سوال ہے مفتی صاحب سے کہ میری جو فیلڈ ہے وہ ساؤنڈ سسٹم کی ہے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ میرے پاس ایک چیز اویلیبل نہیں ہے لیکن جو سامنے والا میرا کلائنٹ ہے اس کو ہم بولتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے پاس چیز اویلیبل ہے. جب وہ کام میرے پاس آتا ہے تو میں جو ہے مارکیٹ سے وہ سامان اٹھا کے لے جاتا ہوں اور لے جا کے کام کر کے آ کے واپسی جس کی چیز ہوتی ہے اس کو دے دیتا ہوں اور اس کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ دے دیتا ہوں, لیکن کلائنٹ کے آگے یہ شو آن کرتا ہوں کہ وہ چیز میری ہی ہے. تو آیا ایسا کرنا کیسا؟
دیکھیں یہاں پہ ایک سے زائد ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز کرایہ پر لیتے ہیں اور اس کو مثال کے طور پہ انہوں نے پیچھے سے کرایہ پر لی ہے وہ چیز 5000 روپے کی,
ٹھیک,
آگے سے اس کو کرایہ ملنا ہے 6000 روپے کا اور آگے سے کرایہ پر دے رہے ہیں تو فقہی طور پر یہاں تھوڑی سی دقتیں ہیں,
ٹھیک.
لیکن جب ان کا کوئی بندہ ساتھ میں جاتا ہے اور اس کے ساتھ کرایہ 6000 روپے لے رہے ہیں, اب جو پیچیدگی تھی وہ دور ہو گئی,
ٹھیک.
اور جیسا کہ ان کا کام میں نے بتایا ساؤنڈ سسٹم کا, تو ساؤنڈ سسٹم کبھی بھی جو ہے وہ بغیر उसके मास्टर के या उसके चलाने वाले के नहीं जाता। तो यूं जो एक फिक्री दिक्कत थी वो तो दूर हो गई। अब जो दूसरा मसला है मेरे पास मौजूद है, ये ना कहा करें, इंतज़ाम हो जाएगा, जो चीज़ आप बताते हैं हमें बता दें। डेकोरेशन के वालों के पास भी यही होता है बाज़ूकात, क्योंकि पास ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं तो एक डेकोरेशन वाले के पास लिमिट जो है वो वेयर हाउस होता है, तो कई ऑर्डर एक साथ आ गए तो दूसरों से किराए पर लेकर आगे प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये कहने की इजाज़त नहीं है कि मेरे पास है, हालांकि आपके पास ना हो, तो ये तो वाज़ह तौर पर झूठ है।
मुफ्ती, इसी तरीके से जो इवेंट मैनेजमेंट का काम है ये फील्ड आजकल बढ़ रही है और ऐसा लगता है मजीद जो है ना वो एक्सटेंड करेगी, और कुछ पकवान वाले भी इस तरीके से हो गए। पहले तो ये होता था कि जैसे आपने फरमाया वो डेकोरेशन की शॉप्स या सेंटर होते थे, वहीं पे जो चेयर्स वगैरह और दीगर सामान दस्तियाब होता था वो प्रोवाइड कर दिया करते थे। इसी तरीके से पकवान वाले भी मखसूस पकवान होते थे, वो अपने पास ही पकाते थे और या जाके पकाते थे और डिलीवर कर दिया करते थे। अब इसमें एक नई चीज ये आई है कि जी वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, एक ऑफिस बना के बैठ गए, उनकी एक्सपर्टी है, कुछ तजुर्बा है, या किसी भी बिहाफ पर वो एक ऑफिस बना के बैठ गए और वो कहते हैं जी हम आपका पूरा इवेंट जो है वो मैनेज करेंगे, इवेंट डेकोरेशन या दीगर जो लवाजमात हैं वो भी, और उसके अंदर आपका जो खाना होगा वो भी शामिल होगा। अब खाना जो है ये एक तो इवेंट मैनेजमेंट इस एतबार से कि खाने समेत ये मुख्तलिफ जगहों से चीजें ले रहे हैं, इनको भी यही चीज होती है कि इनके पास नहीं, और इसी तरीके से पकवान वाले जो हैं वो खुद नहीं पका रहे, बल्कि उन्हें पता है कि जी बिरयानी वहां अच्छी बनती है, पुलाव वहां अच्छा बनता है, कौरमा वहां, यानी जो डिश जहां अच्छी बनती है वो मुख्तलिफ जगहों से बनवा के एक जगह प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस काम में वो भी इसी तरीके से लेंगे, वो भी जायज होगा।
देखिए जो आपने सूरत बताई है ये तो कई तरह के काम है, बाज चीजें सर्विस बेस हैं, बाज चीजें खरीदो फरोख्त हैं
जी।
जैसे एक हज का पैकेज होता है, तो हज के पैकेज में क्या होता है कि जब कोई प्राइवेट कारवान पैकेज देता है तो आजकल हुकूमत ने लाजिम किया हुआ है, अरब जो हुकूमत है, कि आपने खाना इसमें लाजमी देना है,
ठीक है।
फिर होटल के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट होती है, फिर जहाज के किराए होते हैं, फिर उसकी अपनी एक सर्विस है, वो सब सब चीज़ों को लाइन अप करना। अब जनाब उनको मक्का शरीफ से मदीना मुनव्वरा जाना है, वो खड़े हुए नीचे, तो ये थोड़ी है कि वो नीचे से खड़े हो जाएंगे, पहले से ट्रांसपोर्ट लाइन अप होगी ताकि नीचे उतरें तो ट्रांसपोर्ट मौजूद हो। तो इस बंदे की अपनी खिदमत भी चल रही होती है। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं आज के ज़माने में कि जिसके अंदर एक मल्टी चीज़ें चल रही होती हैं एक साथ, कुछ चीज़ें सर्विस बेस, कुछ चीज़ें फर्द व फरोख्त। जब भी आप ऐसा मायदा करने लगे तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ के अंदर, के जिससे तनाज़ा पैदा हो, यानी फिर नफसे ही ये जो मॉडल है कोई नाजायज़ नहीं है, इस तरह की चीज़ें राइज हैं, चलन है उनका, बस जिन पर तनाज़ा हो सकता है उनको वाजे तौर पर होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर खाने का अगर आपका मामला है तो खाने में आप उनसे देगों पर तय करें अभी कितने किलो की कितने देगे आएंगी और एक देग में कितने किलो का आइटम होगा, ठीक है
जी।
बातोकात बद्दा बोलता भी लमसम में जो है वो आपके इतने मंदे में कर दूंगा, इसके बजाय आप क्वांटिटी पर मायदा करें। अगर आप टिक्के बनाएंगे तो कितने गोश्त के बनाएंगे,
ठीक।
अगर आप फला पीस बनाएंगे तो कितने गोश्त के बनाएंगे, तो इससे क्या होगा कि जब वो माल लेकर आता है तो वो आप गिन भी सकते हैं कितना माल लेकर आया है,
ठीक,
कितना लेकर नहीं आया। वरना मैंने ऐसा भी देखा है कि इसी तरीके से कोई खाने वाला जिसने सब चीज़ें लाइनअप की, बिल्कुल पीक पर पता चला कि खाना शॉर्ट हो रहा है
जी,
लोग खड़े हों प्लेटें उठा के, डिशों में खाना नहीं है
जी।
अच्छा, ये उनकी एक टेक्निक थी, लोगों ने अल्टरनेट चीज़ें उठाई और उठा के बैठ गए। अब जनाब थोड़ी देर के बाद जो सबसे मरगूब चीज़ें थी वो आना शुरू हो गई, तो इस वक्फे ने लोगों को अल्टरनेट की तरफ माइल किया और आखिर में पता चला खाना बच भी गया जनाब, हर चीज़ बच गई है
जी।
लेकिन मेज़बान की तो सुबकी हो गई ना
जी, ऐसे ही
ये दरमियान में एक मिसमैनेजमेंट हुई और लोगों को यूँ देखना पड़ा खाना शायद कम है, लेकिन ये उनकी टेक्निक यूँ थी खाना पूरा हो जाए। तो जो लोग पर हेड का ऑर्डर इस तरह लेते हैं उनके यहाँ ज़्यादा होता है, तो क्वान्टिटी पर जब ऑर्डर होगा तो इस तरह की कोई कन्फ्यूजन जो है वो पैदा नहीं होगी,
ठीक है। मुझसे भी बात चलिए तो ये भी ज़रा क्लियर कर दें कि जो खाने का ऑर्डर देते हैं तो इसमें अफराद गिने नहीं जाते, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन होती है इतने अफराद होंगे तो ऑर्डर लेते हुए देते हुए इवन हम कोई बैंक्वेट बुक कर रहे हैं, कोई होटल बुक कर रहे हैं, कोई हॉल बुक कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है जी कितने अफराद की सेटिंग करनी है, कितने अफराद का खाना होगा। तो जाहिर सी बात है कभी भी मैंने देखा नहीं कि मैं यानी जिनकी जगह बुक कराई जा रही है, जिनको ऑर्डर दिया जा रहा है, वो अफराद गिन रहे हैं या जो मेजबान हैं जिन्होंने ये इवेंट किया है वो अफराद गिन रहे हैं। वो कह देते हैं 100 होंगे, 150 होंगे, 200 होंगे, 1000 होंगे, 5000 होंगे, गिने नहीं जाते, एक अंदाजा ही होता है।
असल में करने वाले लोग अपना काम कर रहे होते हैं।
अच्छा,
हम नोट नहीं कर रहे होते।
ठीक
ठीक है
ठीक।
बाज़ोकात लियारी एक्सप्रेस वे से गुजरना होता है
जी,
तो बिल्कुल जहाँ संगम पे दोनों रोड मिलते हैं आपस में
जी,
तो वहाँ एक बंदा बैठ के गाड़ियाँ लिख रहा होता है कि पीछे जो पट्टी देने वाला है उसने कोई गड़बड़ तो नहीं की, उसके ऊपर एक चेकर बिठाया हुआ है। ठीक है, बस के अंदर ऐसा होता है जो बसें चलती हैं इंटरसिटी बसें, कि कंडक्टरों पर एक चेकर बैठा होता है, अचानक से वो रास्ते में कोई सवार होता है
जी,
गिनता है, लोगों को टिकट चेक करता है। यहाँ सबसे बड़ा जो फार्मूला है वो कुर्सियां है
जी,
कि कुर्सियां जो है ना कितनी खाली हैं
जी,
या मेजबान ने मजीद कितनी कुर्सियों की दरख्वास्त की है।
सही,
तो सबसे पहले तो कुर्सियां गिन के रखी जाती हैं।
सही,
उनको पता होता है कि भाई इतनी कुर्सियां, इतने लोग आएंगे,
ठीक,
कोई खाली होगी तो वो गिन लेते हैं, और मेजबान मजीद कुर्सियों की दरख्वास्त करे तो उनको अंदाजा हो जाता है कितने लोग बढ़ गए हैं। अफराद तो गिने जाते हैं।
मैं एक चीज और चाह रहा हूँ क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी पिछले ही दिनों मुझे तजुर्बा हो, पाकिस्तान में तजुर्बा हो
जी जी,
बाज़ औक़ात किसी किस्म का जदवल वो आपको जाना आना होता है, तो बाज़ औक़ात पैकेज इस तरीके से बन जाते हैं गाड़ी में, हवाई जहाज में, होटलिंग भी होती है उसके अंदर, और वही मील भी उसके साथ ही होता है, खाना भी उसमें हिस्सा होता है। लेकिन जिस होटल में आपका स्टे होता है उसमें सब रहने वाले, सब आने वाले अफराद उस खाने में शामिल नहीं होते। जाहिर सी बात है आपको कंपनी ने पैकेज दिया है, होटल ने तो पैकेज यूं नहीं दिया ना कि जो भी हमारे यहाँ आएगा उसको हम जनाब वो लंच भी देंगे तो डिनर भी देंगे और फिर जो है ना ब्रेकफास्ट भी देंगे, ऐसा नहीं होता। तो अगर ऐसे अफराद उस ब्रेकफास्ट में, लंच में, हाई टी में या डिनर में शामिल हो जाएं जो उस पैकेज का हिस्सा नहीं है, तो उनके लिए क्या हुक्म होगा, और अगर कोई माजी में ऐसा कर चुका है तो उसे क्या करना चाहिए?
देखिए, आमतौर पर होटलों में रूल होता है कि अगर आपके पैकेज में शामिल नहीं है और आप फिर भी बुफे में आना चाह रहे हैं तो उसके अलग चार्जेस होते हैं।
ठीक है,
मुझे याद है हम कुछ साल पहले मक्का मुकरमा का होटल हमने बुक किया
जी,
तो उसमें दो अफराद का जो है ना वो मेंशन था कि दो अफराद का जो नाश्ता है वो इंक्लूड है।
ठीक है,
अब हम दो से ज्यादा अफराद थे।
सही,
तो हमने जाके वहाँ अदायगी की, पहले पूछा कि अगर ज्यादा अफराद उनका तरीकाकार क्या है। उन्होंने कहा कि जनाब आपको इतने पैसे अदा करने होंगे, फिर बंदा तो आप चले जाए, वैसे हमने अदा किया और हम चले गए। तो एक निज़ाम है ना हर जगह, यही है, ये कोई लंगर थोड़ी तकसीम हो रहा होटल में। होटल में जो है वो खरीद फरोख्त के लिए बैठे हुए हैं, जिसके हलाल के लिए बैठे हुए हैं। तो यूं जाके चोरी छुपे घुस जाना ये तो चोरी है, और माले गैर जो है ना खाना है इसकी कोई इजाज़त नहीं है। अच्छा, होटलों में भी फिर ये होता है कि जब आप जाते हैं, जो अखलाकियात भी यही होनी चाहिए, तो जब आप जाते हैं तो सबसे पहले काउंटर पर जाके अपनी एंट्री करवाते हैं।
ठीक,
कि मैं फलां, मेरा रूम नंबर फलां, तो पूछते हैं कि जी आपके रूम में कितने लोग हैं, तो कौन कौन आ गया है, तो यूँ एक एंट्री होती है।
सही,
उनके पास भी एक रिकॉर्ड रहता है।
सही,
कि हमारे पास इतने लोगों ने खाना खाया है।
ठीक, कॉल की तरफ बढ़ते हैं और अगली कॉल शामिल सिलसिला करते हैं, देखते हैं कहाँ से कॉल है और क्या सवाल कर रहे हैं। जी
मुफ्ती साहब, ये ट्रेवल वाले से हमने बात की हुई है पहले के जितने बंदे लाएंगे तो पास फी पासपोर्ट के हिसाब से वो कमीशन देते हैं। अब अगर वो जिसने बात की है वो खुद भी उमरे पे जा रहा है, तो क्या वो अपने पासपोर्ट के पैसे भी उनसे कमीशन के तौर पे ले सकता है?
देखें, वो खुद भी उमरे पे जा रहा है तो उसको ये तो कह सकता है ना कि भाई आप जितना कमीशन देते हो लोगों को, मुझे तो कमीशन नहीं दे सकते लेकिन मेरे पैसे तो कम कर सकते हो ना।
ठीक है, मिसाल के तौर पर 2.5 लाख रुपए का उम्र का पैकेज है और 2.5 लाख रुपए का पैकेज देने पर इसे 5,000 रुपए या 10,000 रुपए कमीशन मिल रहा है, तो अब इसको 2,40,000, 2,45,000 का पैकेज दे दें, यूं?
वो ये तो कह सकता है कि भाई आपके जो एक्सपेंस आते हैं बीच में वो तो नहीं आ रहे, मैं तो डायरेक्ट आपके पास आ गया हूँ।
ठीक है, आप तो और कम करो मुझे।
ठीक है ना, तो लिहाजा आप मुझे पैकेज कम पैसों का दो, बार्गेनिंग करने का तो हक है इसका।
ठीक, और अगर बतौर कमीशन लेता तो क्या हुक्म होगा?
कमीशन तो ये होता है दो पार्टियों को मिलवाने की कमीशन होती है, यहाँ तो ये खुद फरीक है।
सही, तो यहाँ कमीशन नहीं लेगा,
कमीशन
अलबत्ता दूसरे जो मुफ्ती
पर बार्गेनिंग कर सकता है कि भाई मुझे जो है सस्ता दो। बल्कि यहाँ तक होता है बाज चीजों के अंदर कि जो एरिया उस फील्ड के लोग होते हैं उनके लिए खसूसी पैकेज होता है। मिसाल के तौर पर मैं एक मरतबा एक मार्ट में गया, तो मैं देखा वो एक कार्ड जो ना वो स्वाइप कर रहे हैं, अलग से कोई कार्ड था। तो मैंने कहा ये कार्ड कैसे बनता है, क्या है? कहना कि ये हमारे इम्प्लॉयज के लिए, यानी इम्प्लॉयज जब उनके लेते हैं खरीदारी करते हैं उनको अलग से डिस्काउंट होता है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे महकमे होते हैं उसके अंदर जो है वो वहाँ काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए अलग पैकेजेस होते हैं। खासतौर पर हम मिलते हैं इस्लामी बैंकों के लोगों से तो पता चलता है कि इस्लामी बैंकों के जो लोग हैं जब वो खुद कोई प्रोडक्ट उठाते हैं तो उनको बड़ा इनाम नफा लिया जाता है उनसे। तो यूँ फील्ड वाइज मुख्तलिफ सूरत हाल है।
स्कूल में भी मतलब बाद
स्कूल में भी होता है कि टीचर के इतने बच्चे जो है ना अलाव होते हैं या कम फीस होती है। बाज़ुकात जो है ना खासतौर पर जो अफवाज हैं, एक फौजी है उसको लाइफ टाइम जो है ना मुख्तलिफ इदारों से सहूलत मिल रही होती है।
ठीक
के जैसे कोई यूनिवर्सिटी है
जी,
ठीक है, तो उसको अब हाफ जो है उसकी फीस होगी उसके बच्चों की, आम लोगों के लिए हाफ नहीं होगी। तो यूं एक चल रहा होता है। मैं ये सारी तस्वीर इसलिए बयान कर रहा हूँ कि यहाँ जो बार्गेनिंग है ना कोई सवाल वाला मामला नहीं है, और यहाँ जो बार्गेनिंग है कोई जिल्लत पर पेश करने वाला मामला नहीं है, बल्कि इस तरह की चीजें तो एक चल रही है, होती हैं ऑफिशियल वे में, और यहाँ आप बार्गेनिंग कर सकते हैं।
मतलब इसको कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है और वो उसका फायदा उठा रहे हैं।
जी हाँ,
ठीक है। मुझसे एक सवाल है हमारे पास कि अनाज की तोलाई में वजन करने में वो हमारी राय ये है कि मन 41 किलो का और 60 किलो 62 किलो का शुमार किया जाता है, क्या इसकी इजाजत होगी?
60 किलो का क्या?
60 किलो वजन जो है वो 62 किलो को शुमार किया जाता है, यानी 62 किलो होगा जो मैं समझ पाया हूँ सवाल से, 62 किलो होगा तो 60 किलो शुमार करेंगे उसे।
देखिए मुख्तलिफ मार्केटों में मुख्तलिफ तरह का चलन है।
ठीक है,
बाज जगहों पे ये भी है कि माल अगर सूखा हुआ है खुश्क है तो 40 किलो ही मिलेगा।
ठीक है,
माल अगर गीला है यानी ताजा माल है, ताजे माल में एक नमी होती है।
ठीक है,
तो फिर वो एक आध किलो ज्यादा रहते हैं।
वो नमी का वेट
यूं कि जब माल दूसरे शहर में मुंतकिल होता है
जी,
हवा लगती है तो माल सूख जाता है।
ठीक है,
तो उसके वेट में कमी आती है।
सही,
तो यूं अगर बहुत सारी मार्केटों में राइज है, मिर्ची में भी राइज है, अनाज में भी है, कि ये मन के ऊपर कुछ ज्यादा ही दिया जाता है।
ठीक
है, और तकाजा भी किया जाता है उसका।
और मुझसे अगर नमी वाला माल हो लेकिन वो पूरे पूरे वजन में ही दिया जाए तो दुरुस्त होगा?
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी ना उनकी, कि हम ये भी तय होता है जिस तरीके से होता है कि भाई हम बेच तो रहे हैं लेकिन आप माल पहुंच पर लोगे या उसका खुद उठाओगे। तो एक शख्स कहता है कि जी मैं तो खुद उठाऊंगा, तो उसके रेट और होते हैं। जब बेचने वाले की जिम्मेदारी होगी पहुंचाने की, उसके रेट कुछ और होते हैं।
ठीक,
तो इस तरीके से सारी चीजें तय होती हैं।
ठीक,
या ऑप्शंस हो एक से ज्यादा तो वहां फिर शिकों को तय करना जरूरी है ताकि तनाजात की तरफ ना जाया जाए।
कॉल की तरफ बढ़ते, कॉल दीजिए।
मैं सेलमैन ही करना, सेलमैन की मदद दे विच मतलब मैंने लोगों के कोलों तकरीबन समझ लो 10-12 हज़ार रुपया लेना। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह विच अर्ज करन लगा हां कि क्या मेरे ते हजे फर्ज हो सकता है क्योंकि मेरे कोल ते कोनी, यह मैं मसला पूछना चाहता।
जरूरत जिंदगी से जायद कर्जा उतार के जो आपके पास इजाफी चीजें बचती हैं तो वो इजाफी चीजें अगर इतनी हैं कि आप हज पैकेज बर्दाश्त कर सकते हैं तो आपके लिए जो है ना हज पर जाने के लिए कोशिश करना जरूरी है।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
मुझे 5,000 रुपया मिला है कहीं से बाजार से, वैसे रोड के ऊपर पड़ा हुआ मिला है। तो मैंने 2-3 आदमी जो साथ साथ दुकान वाले थे उनसे पूछा है, 5,000 रुपया मुझे मिला है, अगर किसी का है कोई पैसे को मैंने नहीं बताया, मैंने वैसे बता दिया कि किसी को कोई चीज गुम हुई है तो मुझे बताएं। किसी ने कुछ नहीं कहा लेकिन तो नहीं बताया कि मेरे गुम हुए हैं या किसी चीज का, नहीं बताया कि मेरे फिलहाल चीज गुम हुई है। अभी 5,000 का मैं हुजूर क्या करूँ, उसको 5,000 रुपया मैं खर्च कर सकता हूँ?
ये अमानत है आपके पास, थोड़ा सा इंतजार करें, इतना इंतजार कि अब आपको अंदाजा हो कि अब तो इसका मालिक नहीं आएगा। तशहीर भी करवाते रहें और उसके बाद चूंकि ये अमानत है आपके पास, आपकी अपनी रकम नहीं है, इसको बगैर सवाब के नियत के नेक काम में खर्च करना जरूरी है। अगर आप खुद मुस्तहिक ज़कात हैं तो खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते।
तो सवाल है हमारे पास एक के जो एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, बल्कि इन्होंने लिखा है कि एमफिल या पीएचडी के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो बाज़ औक़ात उनसे इदारा या सुपरवाइज़र वगैरह जो है वो कुछ डिमांड्स करते हैं और स्टूडेंट्स उनको किसी ना किसी हद तक पूरी भी कर रहे होते हैं। तो ये डिमांड्स करना और वो पूरा करना कैसा है, और बिन मांगे अगर उन्हें कुछ दिया जाए तो उसका क्या हुक्म?
देखिए, जो आपसे ऊपर मनसब का फर्द है, वो आपका उस्ताद है या आप किसी भी तरह आप पर मनसब की बढ़तरी रखता है, उसके पास आपके काम रुके होते हैं, तो उसको तोहफे तोहफ़ देना जबकि इससे पहले आपकी आदत नहीं थी, तो ये भी रिश्वत में आ सकता है। वजह यह है कि हमारे यहाँ कुछ लोग पैसे की गरमाइश को सारी रुकावटें दूर करने का सबसे बड़ा जरिया समझते हैं, और वो जरिया इसलिए होता है कि कुछ लोग स्पेस देते हैं, स्पेस देते देते उनके मुंह खुल जाते हैं, सलातन मांगना शुरू कर देते हैं, ये कर दो ये कर दो, ये चाहिए वो चाहिए। तो ये सारा इसलिए चाहिए कि आप नंबर सही देंगे, आप रुकावट नहीं बनेंगे, आप जो है उनके जो काम आपको वैसे ही करने थे, आपकी जिम्मेदारी थी, आप वो काम उनके कर देंगे। तो काम निकलवाने के लिए जो चीज़ दी जाए वो तो रिश्वत होती है। तो बदकिस्मती के साथ इस सेक्टर के अंदर अच्छे बुरे लोग सारे होते हैं, एक से बढ़कर एक अच्छे लोग हैं, एक से बढ़कर एक। ठीक है, अब हमारे सुपरवाइजर साहब हैं तो इतने शफीक हैं, इतने शफीक हैं कि हमें शर्मिंदगी होती है। ठीक है, लेकिन बाज़ लोगों के मुतालिक हम सुनते हैं कि वो तो बड़ा अजीब गरीब सूरत हाल है। स्कूल्स में भी ऐसा होता है कि जहाँ बाकायदा वो ना हो, एक होता है कि बाकायदा एक सिस्टम है और किसी को स्पेस ही नहीं मिल रही कुछ गड़बड़ करने की, जहाँ कोई बहुत मजबूत सिस्टम नहीं होता वहाँ पे लोग बहुत कुछ करते हैं।
लास्ट कॉल शामिल ये सिलसिला करते हैं। जी जनाब।
सर, एक चीज हमने कल कैश की कीमत में 40 लाख रुपए की है, अगर उससे हम किस्तों में ले रहे हैं, क्या वो 80 लाख में जायज है?
अल्लाह,
देखिए, नगद चीज सस्ती बेचना और उधार उधार महंगी बेचना, शर्म कोई इसमें बुरी बात नहीं है, बेची जा सकती है और सुबह शाम इसे सौदे हो रहे होते हैं, तो हर मार्केट के अंदर ये सौदा हो रहा होता है कि भाई नगद का ये रेट है, उधार का ये रेट है, इसमें कोई मजायका नहीं है। और हम बारह इस सवाल का जवाब दे चुके हैं कि भाई लॉक हो जाए कीमत आपकी, कि भाई इतने की ये चीज़ आप आपके साथ सौदा हुआ है, उसके बाद कोई ऑप्शन बचा हुआ ना हो, और बिलफर्ज किसी वजह से, मजबूरी से या बगैर मजबूरी के, वो वक्त पर नहीं भी देता पैसे, तब भी पैसे नहीं बढ़ाए जा सकते, क्योंकि हमने तो आपको 6 महीने की उधारवारी बेची थी, आपने तो साल बाद पैसे दिए हैं, लिहाजा रेट ये होगा। नहीं, रेट लॉक हो चुका उस वक्त, उसके बाद जो है वो बढ़ाना इसको नहीं चाहिए, मतलब मुद्दत जो तय हुई उसी पर दे, लेकिन किसी भी वजह से अगर ये ताखिर करता है तो इजाफी रकम नहीं ली जा सकती।
मुझसे एक सवाल है कि एक शख्स के पास 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करनी है और वो अपने बिजनेस में वो इंक्लूड कर लेंगे 5 लाख रुपए, और वो कह रहे हैं कि हम आपको मुनाफे में से 3500 रुपए या 35,000 लिखना चाह रहे होंगे, तो 3500 रुपए जो है वो आपको हर महीने दिया करेंगे। ये तस्री ये ज्यादा जोर इस बात पे दे रहे हैं कि वो अपने पास से नहीं देंगे, लगाएंगे बिजनेस में, उससे जो इनकम होगी वहीं से देंगे।
देखिए, यूं फिगर में तय करना तो जायज़ ही नहीं है। कारोबार के अंदर नफा फीसद में तय किया जाता है, और नफा फीसद में तय करने के लिए आपको कैपिटल का फीसद निकालना पड़ता है
ठीक है।
कि मेरा इतना शामिल है, आपका इतना शामिल है, हम यहाँ खड़े हैं, अब हम शुरू कर रहे हैं, अब हम कारोबार करेंगे, तो असल तो कारोबार ये होता है। तो यूं फीसदों में तय करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। मैं अभी इस्लामाबाद जाना हुआ तो एक बुराई जिसने इस्लामाबाद से ही जो है इब्तदा की थी,
जी
ये जनाब पूरा फ्लोर है, और ये पूरा फ्लोर जनाब जब बनेगा, जब बनेगा, लेकिन आज आप 1 करोड़ रुपए जमा कराओ और आज आपको 18% किराया शुरू हो जाएगा,
जी
10% किराया शुरू हो जाएगा। 10% तो एक आम सी बात है, 10% का क्या मतलब है कि आपने
1 करोड़ पे 10 लाख।
10 लाख रुपए दे दिए, ठीक है ना, और अगर आप एक साल में 10 लाख रुपए दे रहे हैं तो बाज़ औक़ात तो महीनों में ये चीजें गई हैं कि महीने का इतना दे देंगे हम।
जी जी
लोगों ने धड़ाधड़ बुकिंग शुरू करवाई, हमने कहा भाई ये क्या चीज़ है, एक चीज हवा में है अभी मौजूद ही नहीं है, किराया तो होता है चीज के बेनिफिट हासिल करने का, जब वो माल मौजूद ही नहीं है तो किस चीज का किराया?
ठीक,
ये सीधा सीधा सूदी मामला हो रहा है, कोई चीज बनाने वाली नहीं, इन्होंने ये भाग जाएंगे
जी।
अब वो सारे के सारे लोग आए, इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट बने थे
जी,
तकरीबन उसके मालिकान भाग चुके हैं, कुछ अर्सा उन्होंने पैसे दिए, पैसे बटोरे चल भाई। तो अभी मैं हैदराबाद जाना हुआ, पता चला कि यहाँ भी इस तरह का एक मामला शुरू हुआ था, लेकिन वो भी फ्रॉड की नजर हो चुका है। तो यूं बाज़ोकात हम अपनी मर्जी से ऐसे तरीके लेकर आते हैं, या हो सकता है बाज़ लोग जानबूझकर प्री प्लानिंग के तहत लाते हो कि हमें फ्रॉड करना है तो यूं करके तरीका लाना पड़ेगा और यूं करना पड़ेगा तो फिर हम भाग जाएंगे
जी।
तो यूं शरीयत से जब कोई तरीका मुतसादिम हो रहा होता है, टकरा रहा होता है, तो एक वाजे बात होती है कि ये गुनाह का काम है। फ्रॉड हो ना हो एक अलग मामला, जैसे सूद का कोई मामला करता है, बाज़ाहिर तो फ्रॉड का मामला नहीं है लेकिन है तो गुनाह ना
जी।
अल्लाह ताला ने ऐलान जंग करार दिया है सूद के मुर्तकबीन को।
ठीक
जी,
अल्लाह पाक हमें हलाल रोजी कमाने, हलाल जगह से कमाने की तौफीक अता फरमाए, उसमें बरकतें भी अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सिलसिले का वक्त खत्म हुआ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सच्चा अमानतदार ताज मुझे को तू या रब बना, सच्चा अमानतदार ताज मुझे को तू या रब बना, तेरी पसंद की हो तिजारत गफलतों से तू बचा।